9. ऋग्वेद का मौलिक अंश। पाश्चात्य विद्वानों ने विचार व्यक्त किया है कि ऋग्वेद का कुछ अंश मौलिक है और कुछ अंश परकालीन है। उनका मंतव्य है, 1. ऋग्वेद के मौलिक अंश में मंडल 2 से 7 तक ही हैं। इन्हें वंश मंडल भी कहते हैं। इनमें से प्रत्येक मंडल में एक ही ऋषि के वंशजों द्वारा दृष्ट मंत्रों का संकलन है। 2. मंडल 2 से 7 तक का क्रम सूक्त संख्या पर निर्भर है। मंडल 2 से 7 तक प्रायः सभी मंडलों में सूक्तों की संख्या बढ़ती गई है। 3. मंडल 8 को स्पष्ट रूप से किसी एक ऋषि के वंश का मंडल नहीं कहा जा सकता। इसे में कई ऋषियों कर्ण, भृगु, अंगिरस आदि के वंशज हैं। मंडल 1 और 8 में कर्ण ऋषि के वंशजों द्वारा दृष्ट मंत्रों की पर्याप्त संख्या है। इनमें भाव और भाषा का साम्य भी देखने को मिलता है। इस प्रकार के लगभग 40 सूक्तों में भाव साम्य दृष्टिगोचर होता है। 4. नवम मंडल की अपनी विशेषता है। इसमें पवमान, पवित्र, सोम से संबद्ध सभी मंत्रों का संकलन है। इसमें मंडल 2 से 7 तक के ऋषियों के द्वारा दृष्ट मंत्र भी संग्रहित हैं। सोम विषयक मंत्र चाहे किसी भी ऋषि द्वारा दृष्ट हो, इसमें संग्रहित है। इस मंडल में सूक्तों के विन्यास का आधार मुख्य रूप से छंद है। तदनुसार ही सूक्तों का क्रम रखा गया है। 5. मंडल 1 बाद में मूल ग्रंथ में जोड़ा गया। इसमें विविध ऋषियों के द्वारा दृष्ट मंत्रों का संकलन है। इसमें कुछ ऋषि परिवार विशिष्ट रूप से लिए गए हैं। 6. मंडल 10 बाद में जोड़ा गया। इसमें भाषा, व्याकरण एवं छंद की दृष्टि से विशिष्ट शब्दावली, नवीन भाव, दार्शनिक तत्व तथा अन्य नवीन सामग्री के संकलन के कारण नवीनता है। विशेष उल्लेखनीय है कि मंडल 1 और 10 में सूक्तों की संख्या समान अर्थात 191 ही है। इन दोनों मंडलों में मंत्रों की संख्या अन्य सभी मंडलों से अधिक है। पाश्चात्य मत की समीक्षा। आपाततः पाश्चात्य मत बहुत रुचिकर एवं ग्राह्य प्रतीत होता है। यदि ऋग्वेद संहिता के संकलन में अपनाए गए सिद्धांतों को पहले समझ लिया जाता तो इस प्रकार की कल्पना निरर्थक प्रतीत होती। मौलिक अंश और परकालीन अंश का निर्णय करने के लिए आवश्यक है कि उनके दृष्टा ऋषियों का स्थिति काल आगे पीछे हो। यदि दृष्टा एक ही ऋषि है तो उसके दृष्ट मंत्रों में कुछ को प्राचीन और कुछ को नवीन या परकालीन कैसे कह सकते हैं। भाषा साम्य और भाव साम्य होने पर भी कुछ को मौलिक और कुछ को प्रक्षिप्त कहना असंगत है। मंडल 1 और 8 में अनेक सूत्रों के दृष्टा कर्मवंशी ही हैं। मंडल 9 में तो सभी ऋषियों का संकलन है। मंडल 10 में भी अंगी राव वंशज। सूक्त 42 से 44, 47, 67, 68, 71 वामदेव वंशज सूक्त 45, 54 से 56 विश्वामित्र सूक्त 167 आदि के दृष्ट सूक्त और मंत्र हैं। एतदर्थ आवश्यक है कि मंत्रों के संकलन में अपनाए गए सिद्धांतों को समझ लिया जाए। वेदों का विभाजन। यह माना जाता है कि पहले सभी वेद एक संहिता के रूप में थे। दुर्गाचार्य ने निरुक्त की वृत्ति में उल्लेख किया है कि वेदों की यह संहिता अधिक भारी थी एवं कष्ट साध्य थी, अतः सुबोध बनाने के उद्देश्य से वेद व्यास कृष्ण द्वैपायन जी ने इसका विभाजन 4 वेदों के रूप में किया। इस पृथककरण व्यास के कारण व्यास का वेद व्यास नाम पड़ा। वेदों को स्वरूप भेद के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। मीमांसा दर्शन में जैमिनी ने इसका स्पष्टीकरण किया है। ये 3 भेद हैं, पद, गद्य और गीतिगान। जिन मंत्रों में अर्थ के आधार पर पाद चरण की व्यवस्था है और पद्यात्मक है, उन्हें ऋच या ऋचा कहा गया। ऐसे संकलन को ऋग्वेद कहते हैं। जिन ऋचाओं का गान होता है और जो गीति रूप है, उन्हें साम कहते हैं। ऐसे मंत्रों के संकलन को सामवेद कहा जाता है। जो पद्य और गान से रहित हैं अर्थात गद्य रूप हैं, उन्हें यजुस कहते हैं। ऐसे मंत्रों का संकलन यजुर्वेद है। अथर्वेद में पद्य और गद्य दोनों का संकलन है, अतः वह इसी 3 भेद के अंतर्गत आता है। तेषां ऋग यथार्थवशेन पाद व्यवस्था गीतीषु सामाख्या शेषे यजुः शब्दः। इस भेद त्रय के कारण वेदों को वेद त्रयी कहते हैं। वेद त्रयी का भाव है वेदों की त्रिविध रचना, पद्य ऋक, गीति साम, गद्य यजु। ऋक वेद संकलन के कुछ नीति तत्व या सिद्धांत। ऋग्वेद के संकलन में अपनाए गए कुछ सिद्धांत ये हैं। 1. ऋषि परिवारों से संबद्ध सूक्तों एवं मंत्रों का पहले संग्रह कर लिया जाए। इस दृष्टि से मंडल 2 से 7 तक का संग्रह किया गया। इनमें केवल एक ही ऋषि वंश हैं। मंडल आठ में कर्ण, भृगु आदि द्वारा दृष्ट मंत्र अधिक हैं, अतः इसमें कई ऋषि वंशों का संकलन है। दो, एक ऋषि द्वारा दृष्ट मंत्रों को यथासंभव एक ही स्थान पर रखा जाए। तीन, विषय की एकता पर ध्यान रखा जाए। चार, सोम पौमान सोम विषयक सूक्तों एवं मंत्रों की संख्या बहुत अधिक है, अतः उन्हें एकत्र रखा जाए, भले ही वे सूक्त किसी भी ऋषि द्वारा दृष्ट हों। पांच, सूक्तों के क्रम विन्यास में देवों को यथासंभव इस क्रम से रखा जाए, अग्नि इंद्र विश्व देवा मरुत अश्विनौ मित्रा वरुणौ आदि। छ, छंदों के क्रम विन्यास में प्रायः यह क्रम रखा जाए, गायत्री त्रिष्टुप त्रिष्टुभ जगति अनुष्टुभ अनुष्टुभ और पंक्ति, ये छंद ही पूरे ऋग्वेद में मुख्य हैं। सात, ऋषि परिवारों से जो सूक्त बच जाए उन्हें ग्रंथ के आदि या अंत में स्थान दिया जाए। इस प्रकार के मंडल हैं एक और दस। इनमें भी यह ध्यान रखा जाए कि जिन ऋषियों या ऋषि वंशजों के सूक्त अधिक हैं उन्हें मंडल एक में स्थान दिया जाए। साथ ही यह भी ध्यान रखा जाए कि आदि और अंत के मंडलों में सूक्तों की संख्या प्रायः समान हो। इस दृष्टि से दोनों मंडलों में सूक्तों की संख्या 191 है। प्रथम मंडल में इन ऋषियों या उनके वंशजों को स्थान दिया गया है। मधु छंदा सूक्त 1-11, मेधा तिथि का कांडव 12-23, हिरण्य स्तूप आंगिरस 31-35, कण्व या कण्ववंशी 36-50, सभ्य अंगिरस 51-57, गौतम या गौतमवंशी 58-64, 74-93, कुत्स आंगिरस 94-115, दीर्घ तमस और वंशज 116-126, 140-164, अगस्त्य 165-191। प्रथम मंडल में सूक्त 164 विज्ञान आदि की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। आठ, ग्रंथ के अंत में ऋषियों को स्थान दिया जाए जिनके सूक्तों या मंत्रों की संख्या कम हो, अतएव दशम मंडल में ऋषियों की संख्या अधिक है। साथ ही बीच बीच में ऋषिकाओं को भी स्थान दिया गया है। दशम मंडल ऋग्वेद का नवनीत है। इसमें कुछ उच्च दार्शनिक आध्यात्मिक और वैज्ञानिक भाव वाले सूक्त हैं, जैसे मनोविज्ञान सूक्त 58-164, भाषा विज्ञान 71, सृष्टि उत्पत्ति 72-81-121, पुरुष सूक्त 90, आयुर्वेद 97-161, वीर रस 103, दान 117, अध्यात्म 123, वाक सूक्त 125, नासदीय सूक्त 129, श्रद्धा सूक्त 151, संज्ञान सूक्त 191। दशम मंडल में भी वंश मंडलों के कई ऋषियों के वंशजों के सूक्त हैं, जैसे अंगिरा वंशज सूक्त 42-44, 117, 128, 164, 172, 174, 191। विश्वामित्र वंशज 160-167, भृगुवंशी 171। उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट होता है कि पाश्चात्य विद्वान का यह कथन सर्वथा संगत है कि कुछ अंश प्राचीन हैं और कुछ अर्वाचीन। 11, ऋग्वेद का वर्ण विषय। ऋग्वेद में आर्य संस्कृति का विशद निरूपण हुआ है। इसमें सामाजिक आर्थिक राजनीतिक शैक्षिक नैतिक व्यवस्था का चित्रण मिलता है। साथ ही इसमें आध्यात्मिक दार्शनिक कलात्मक एवं वैज्ञानिक तथ्यों का भी यथास्थान निरूपण हुआ है। ऋग्वेद में मुख्य रूप से विभिन्न देवों की स्तुति है और उनसे यश विद्या श्री विद्धि आदि की प्रार्थनाएं की गई हैं। कुछ नैतिक विषयों को स्पष्ट करने के लिए आख्यानों का भी आशय लिया गया है। अनेक स्थलों पर मनोविज्ञान सृष्टि उत्पत्ति आयुर्वेद भाषा विज्ञान ज्योतिष आदि से संबद्ध सामग्री भी प्रचुर मात्रा में मिलती है। काव्य और कलात्मकता के दृष्टि से भी अनेक सुंदर प्रसंग प्राप्त होते हैं। आध्यात्मिक और दार्शनिक भाव तो पद पद पर प्राप्य हैं। यहाँ यह ध्यान रखना चाहिए कि वेदों में देव शब्द प्रतिपाद्य विषय या वर्ण विषय के अर्थ में आता है, न कि देवता के अर्थ में। पाश्चात्य विद्वानों में भ्रमवश ऋग्वेद में देव या देवता का अर्थ कोई देवता लिया है। ऋग्वेद में अग्नि ऊर्जा का प्रतीक है। ऋग्वेद के अग्नि सूक्तों में ऊर्जा के विविध उपयोग आदि का वर्णन है। सोम सृष्टि का आधार है। सोम के आधार पर ही सृष्टि की रचना हुई है। सोम तीनों लोकों में विद्यमान है। सोम का अर्थ केवल सोम रस ही नहीं, यज्ञों में सोम पान का विधान है। सोम रस देवों को भी अर्पित किया जाता है। वरुण न्याय का देवता है। वह समस्त सृष्टि का नियामक है। मित्र वरुण दो महान ऊर्जाएं हैं। ये वर्षा से लेकर सूर्य किरणों के प्रसार के आधार हैं। अश्विनौ ये युगल देव हैं। ये सदा साथ रहते हैं। दोनों की सत्ता अविच्छिन्न है, अतः इन्हें न केवल प्राण और अपान के रूप में देवों का वैद्य कहा जाता है, अपितु ये दो धनात्मक और ऋणात्मक शक्तियां हैं जिनके संयोग से ऊर्जा की उत्पत्ति होती है। मरुदेव विश्व की महाशक्तियों में हैं, ये वर्षा के कारक हैं, ये विभिन्न गैसों के रूप में वर्णित है, ये विद्युत चुंबकीय तरंगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसी प्रकार वाग देवी, वाग तत्व, श्रद्धा, ईड़ा, सरस्वती आदि देवियां मनोवैज्ञानिक, सांस्कृतिक और भाषा वैज्ञानिक तथ्यों का निरूपण करती हैं। हिरण्यगर्भ, नासदी एवं पुरुष आदि सूक्त सृष्टि प्रक्रिया का विवेचन प्रस्तुत करते हैं। ऋग्वेद में राजनीति से संबद्ध अनेक सूक्त हैं जिनमें सभा, समिति आदि के कर्तव्य, राज्य संचालन, अधिकारियों के कर्तव्य तथा शुद्ध संचालन आदि का वर्णन है। इस प्रकार ऋग्वेद विविध विषयों का रत्नाकर है। आचार शिक्षा, नीति शिक्षा, धर्म शिक्षा तथा कर्तव्योपदेश आदि का वर्णन पग पग पर प्राप्य है। इस विषय का विस्तृत विवेचन संस्कृति खंड में किया गया है। 12. ऋग्वेद के कुछ महत्वपूर्ण सूक्त। 1. पुरुष सूक्त। यह सूक्त चारों वेदों में आया है। इसमें पुरुष परमात्मा के विराट रूप का वर्णन किया गया है और उसी से समस्त विश्व की सृष्टि का वर्णन है। इसमें पुरुष को सहस्रों सिर पैर आदि से युक्त बताया गया है। उससे चराचर जगत की सृष्टि तथा चारों वेदों की उत्पत्ति कही गई है। सर्वप्रथम चतुर्वर्ण व्यवस्था का इसमें ही उल्लेख है। चारों वर्णों को विराट पुरुष का मुख आदि अंग बताया गया है। यज्ञ प्रक्रिया को सृष्टि का प्रथम धर्म कहा गया है। पुरुष की को ही सृष्टि का सर्वस्व, वर्तमान, भूत और भविष्य बताया गया है। क. पुरुष एवेदम सर्वम यद्भूतम यच्च भव्यम। ख. ब्राह्मणोस्य मुखमासीद बाहुराजन्यः कृतः उरु तदस्य यद्वैश्यः पद्भ्याम शूद्रो अजायत। यह सूक्त अपनी उदात्त भावना, दार्शनिकता, भाव गंभीर और अंतर्दृष्टि के लिए विख्यात है। 2. नासदीय सूक्त। यह सूक्त वैदिक ऋषियों के प्रातिव ज्ञान और अलौकिक दार्शनिक चिंतन का परिचायक है। इस सूक्त में सृष्टि की उत्पत्ति से पूर्व की स्थिति का वर्णन करते हुए कहा गया है कि उस समय न असत था, न सत, न रात्रि थी, न दिन। सृष्टि का सूचक कोई चिन्ह नहीं था। सबसे पहले काम संकल्प एक क्षण उत्पन्न हुआ। यही संकल्प सृष्टि के नाना रूपों में अभिव्यक्त हुआ। उस समय केवल एक ही तत्व था जो अपनी नैसर्गिक शक्ति से जीवित था। इस सूक्त में प्रतिभा की शक्ति से अद्वैत तत्व की शाश्वत स्थिति की अनुभूति हो गई है। आनीत वातम स्वधया तदेकम तस्माद हान्यन्य परह किंचनास। 3. हिरण्यगर्भ सूक्त। इस सूक्त में उदात्त दार्शनिक भावों की अभिव्यक्ति करते हुए क अर्थात प्रजापति का महत्व वर्णित है। 9. मंत्रों में कस्मै देवाय हविषा विधेम अर्थात ऐसे प्रजापति देव को हम अपनी स्तुति अर्पित करते हैं यह कहा गया है। वह प्रजापति सृष्टि के प्रारंभ में हिरण्यगर्भ सुवर्ण का पिंड ब्रह्मांड के रूप में प्रकट हुआ। वही सृष्टि का नियामक हुआ। वही सभी प्रकार की शक्ति का स्रोत है। वही त्रिलोक का धर्ता है। उसी की कृपा से वैभव की प्राप्ति होती है और सर्वज्ञ विजयश्री मिलती है। उसकी छाया अमृत है और अकृपा मृत्यु। क. हिरण्यगर्भ समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत। ख. यह आत्मदा बलदा यस्य छाया अमृत यस्य मृत्युः। 4. अस्य वामीय सूक्त। यह ऋग्वेद के प्रथम मंडल का दीर्घतमस ऋषि द्वारा दृष्ट अति महत्वपूर्ण सूक्त है। इसमें 52 मंत्रों में दर्शन, अध्यात्म, मनोविज्ञान, भाषा विज्ञान, ज्योतिष और भौतिक विज्ञान से संबद्ध अनेक तथ्यों का वर्णन है। भारतीय और पाश्चात्य विद्वानों ने इस सूक्त को अत्यंत क्लिष्ट और दुर्बोध माना है। इसमें इन विषयों से संबद्ध ये मंत्र हैं। 1. दर्शन एवं आध्यात्म। 1. 20-22, 30, 38, 44, 46, 2. मनोविज्ञान 18, 3. भाषा विज्ञान 10, 41, 42, 45, 49, 4. ज्योतिष 11-15, 48, 5. भौतिक विज्ञान 2, 3, 43, 51, 6. वेद मंत्रों में दिव्य शक्ति 39, 7. छंदों का महत्व 23. इस सूक्त में ही एकेश्वरवाद का प्रतिपादक मंत्र 1. सदविप्रा आया है। त्रयी वाद का प्रतिपादक द्वासुपर्णा मंत्र है। इसमें यज्ञ को विश्व का केंद्र प्रतिपादित किया गया है। क. इंद्रम मित्रम वरुणम अग्निमाहु रथो दिव्यः स सुपर्णो गरुत्मान। एकम सदविप्रा बहुधा वदन्ति अग्निमयमं मातरिश्वानम आहु। ख द्वासुपर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्षं परिसस्व जाते तयोरन्यपि पप्लं स्यादवृत्ति अनश्नन् अन्यो अभिचाकशीति। ग अयम यज्ञो भुवनस्य नाभिः। पांच श्रद्धा सूक्त। इस सूक्त में यद्यपि पांच ही मंत्र हैं, परंतु भाव गंभीर और विचारों की उदत्तता के कारण यह सूक्त अत्यंत आदरणीय माना जाता है। मंत्र में श्रद्धा की परिभाषा दी गई है, किसी कार्य में अतिशय हार्दिक संकल्प से अभिनिवेश या प्रवृत्ति श्रद्धा है। यह श्रद्धा ही जीवन को पवित्र बनाती है और महान लक्ष्यों को प्राप्त कराती है। वेदों में उच्च लक्ष्य की प्राप्ति के लिए रित और सत्य के साथ श्रद्धा को आवश्यक बताया गया है। श्रद्धा से ही ब्रह्म प्राप्ति संभव है। वाक सूक्त 10.125.4 में भी श्रद्धा को ब्रह्म प्राप्ति का साधन बताया गया है। श्रद्धा काम संकल्प की पुत्री है, अतः उसे कामायनी कहते हैं। इस सूक्त को आधार बनाकर ही श्री जयशंकर प्रसाद ने विश्व श्रेष्ठ अमर कृति कामायनी की रचना की। सूक्त में प्रार्थना है कि वह श्रद्धा हमारे हृदय में स्थापित हो। क श्रद्धा हृदयाया कुत्या श्रद्धया विन्दते वसु। ख श्रद्धे श्रद्धापयेह नः। ग ऋतवाकेन सत्येन श्रद्धया। घ ऋतं वदन सत्यं वदन श्रद्धां वदन। ग श्रुधि श्रुत श्रद्धिवं ते वदामि। च श्रद्धया सत्यमाप्यते। छ वाक सूक्त। ऋग्वेद के अति महत्वपूर्ण सूक्त में वाक सूक्त है। इस सूक्त के आठ मंत्रों में वाक तत्व शब्द ब्रह्म शब्द तत्व या वाक देवी का ब्रह्म के रूप में वर्णन किया गया है। वाक तत्व सर्वत्र व्याप्त है। यह इंद्र अग्नि सोमित्र वरुण आदि की ऊर्जा का स्रोत है। यह राष्ट्र निर्मात्र शक्ति है। वाक तत्व की प्रतिभा है। इसकी कृपा से ही मनुष्य ऋषि मुनि सिद्ध योगी और मेधावी होते हैं। यह वायु के तुल्य सर्वत्र गतिशील है और सृष्टि की निर्माता है। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के भाषा विज्ञान के प्रोफेसर रईस ने साइंस ऑफ लैंग्वेज भाग एक पृष्ठ एक ग्रंथ में भाषा शास्त्रियों का ध्यान इस सूक्त की ओर आकृष्ट किया है और लिखा है कि इन मंत्रों में वैदिक ऋषि का वाक तत्व के विषय में जो वक्तव्य है वह बहुत ही गंभीर विचारपूर्ण भाषा विज्ञान की दृष्टि से सत्य तथा बहुत ही दूरदर्शितापूर्ण है। पूरा सूक्त उत्तम पुरुष में वाक आमृणी ऋषि द्वारा आत्मविवेचन के रूप में प्रस्तुत किया गया है। इस सूक्त के अति प्रसिद्ध मंत्र ये हैं। क अहम राष्ट्री संगमनि वसु नाम। ख अहमेव स्वयमिदं वदामि जुष्टं देवे भीरुत मानुषे भी। यम कामये तम तमुग्रम कृणोमि तम ब्राह्मणम तम मृषिम तम सुमेधाम। ग अहमेव वात इस प्रवामि आरभ माड़ा भुवनानि विश्वा। सात संज्ञान सूक्त। इस सूक्त के चार मंत्रों में सामाजिक सौहार्द सामनस्य सह अस्तित्व एकमत्य और संगठन का उपदेश दिया गया है। यह सूक्त सामाजिक राष्ट्रीय और आर्थिक चिंतन में समवेत स्वर या समन्वय की भावना का प्रतिपादक है। विश्व स्तर पर इस सूक्त को संगठन के लिए उद्घृत किया जाता है। हम मिलकर चले मिलकर बोले हमारे हृदय में एकता हो हमारे मन और चित्त समान हो जिससे हम सह अस्तित्व का पालन कर सके। स्मरणीय मंत्र है। क सम गच्छध्वम सम वदध्वम सम वो मनांसि जानताम। ख समानो मंत्र समिति ही समानी समानम मन स चित्तमेशाम। ग समानी व आकुति समाना हृदयानि वह समानमस्तु वो मनो यथा वह सुसाहसति। आठ दान स्तुति सूक्त। ऋग्वेद के इन सूक्तों में दान की महिमा का गुणगान है। वैदिक संस्कृति में त्याग और दान इन दो गुणों को सर्वोच्च स्थान दिया गया है। इन सूक्तों में कहा गया है कि दानी अमर हो जाता है, उसके यहाँ अर्थ संकट कभी नहीं होता। वह समाज और राष्ट्र में सर्वत्र पूजा जाता है। उसे सूर्यलोक और स्वर्ग में भी उच्च स्थान प्राप्त होता है। दानी को ही संत महात्मा ऋषि और ब्रह्मा कहा जाता है। जो मित्र आदि की सहायता नहीं करता उन्हें धन नहीं देता वह महापापी होता है। जो भिक्षुक को अन्न नहीं देता उनकी स्त्री नष्ट हो जाती है वह मित्र नहीं जो मित्र को धन दान न दे। केवलागो भवति केवल आदि, अकेला खाने वाला अकेला ही पापी होता है, उसका धन उसके लिए ही विपत्ति है। कुछ स्मरणीय मंत्र ये हैं, क न भोजा ममरु न न्यर्थमीयु, ख उच्चा दिवि दक्षिणावंतो अस्थु, ग न स सखायो न ददाति सख्ये, घ मोघमन्नम विन्दते अप्रचेताः, सत्यं ब्रवीमि वद इत स तस्य नार्यमडं पुष्यति नो सखायं, केवलाघो भवति केवलादि। न अक्ष सूक्त, इस सूक्त के 14 मंत्रों में अक्ष दूत जुआ खेलना की कड़े शब्दों में निंदा की गई है। यह सामाजिक कुरीति है। जुआ खेलना स्वयं को और अपने परिवार को नष्ट करना है। जुआरी का तथा उसकी पत्नी का सर्वत अपमान होता है। जुआरी लोभवश जुआ खेलता है और अंत में अपना सर्वनाश कर लेता है। अतः शिक्षा दी गई है कि जुआ न खेलो, कृषि करो, कृषि की आय से ही संतुष्ट रहो। अक्षैर महादिव्य कृषिमित कृषस्व वित्ते रमस्व बहुमन्यमानः। 10 विवाह सूक्त, अथर्वेद में भी विवाह से संबद्ध 2 सूक्त, कांड 14 सूक्त 1 और 2 आए हैं। अधिकांश मंत्र वे ही हैं। इसमें सूर्य सूर्य की पुत्री अर्थात उषा का सोम चंद्रमा से विवाह का वर्णन है। अश्विनी कुमार इसमें सहयोगी का कार्य करते हैं। इस सूक्त में स्त्री के कर्तव्यों का बहुत विस्तार से वर्णन है। स्त्री को उपदेश दिया गया है कि वह सास ससुर की सेवा करे, पति को अपना देवता समझे, परिवार का हित करना उसका कर्तव्य है। साथ ही स्त्री को गृह स्वामिनी, गृह पत्नी, साम्राज्ञी कहा गया है। स्त्री को अत्यंत आदरणीय स्थान देते हुए उसे सास ससुर देवर आदि की साम्राज्ञी स्वामिनी कहा गया है। भारतीय संस्कृति के अध्ययन के लिए यह सूक्त अत्युत्तम है। क अघोर चक्षुर पतिध्नि एधि शम नो भव द्विपदे शम चतुष्पदे, ख साम्राज्ञी श्वसुरे भव साम्राज्ञी श्वश्रवाम भव ननांदरी साम्राज्ञी भव साम्राज्ञी अधिदेवृषु। 13 आख्यान एवं संवाद सूक्त। ऋग्वेद में आख्यान और संवाद सूक्तों की संख्या पर्याप्त है। इनको ही परकालीन इतिहास, काव्य, महाकाव्य, आख्यान साहित्य और नाटकों का बीज रूप माना जाता है। जो बातें ऋग्वेद में बीज रूप में प्राप्य हैं, वे ही ब्राह्मण ग्रंथों आदि में सुपुष्पित एवं फलित वृक्ष के रूप में विकसित हुई हैं। इनका ही रामायण, महाभारत और पुराणों के युग में विस्तार हुआ है। इस दृष्टि से आख्यान तत्व ऋग्वेद का महत्वपूर्ण विषय है। भारतीय परंपरा भी वेदों से नाटकों की उत्पत्ति मानती है। महामुनि भरत ने अपने नाट्यशास्त्र में उल्लेख किया है कि देवों की प्रार्थना पर ब्रह्मा ने चारों वेदों से सार भाग लेकर पंचम वेद नाट्य वेद की रचना की। उन्होंने ऋग्वेद से पाठ संवाद, कथोपकथन, सामवेद से संगीत, यजुर्वेद से अभिनय और अथर्वेद से रस के तत्वों को लिया। जग्राह पाठ ऋग्वेदाद सामभ्यो गीतमेव च यजुर्वेदाद विनयान रसानाथर्वणादपि। अधिकांश पाश्चात्य विद्वान भी ऋग्वेदीय संवाद सूक्तों से नाटकों की उत्पत्ति मानते हैं। इनमें प्रोफेसर मैक्स मूलर, प्रोफेसर सिल्वा लेवी, प्रोफेसर फोन श्रोएदर, डॉक्टर हर्टल, प्रोफेसर ओल्डेनबर्ग, विंडिश और प्रोफेसर पिशेल मुख्य हैं। इस दृष्टि से संवाद सूक्तों का महत्व बढ़ जाता है। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि वेदों के ये आख्यान काल्पनिक रचनाएं हैं। किसी गूढ़ दार्शनिक, आध्यात्मिक या नैतिक विषय को सुरुचिपूर्ण और मनोरंजक बनाने के लिए उसे आलंकारिक आख्यान के रूप में प्रस्तुत किया गया है। किसी गूढ़ विषय को समझाने के लिए कथा या उदाहरण का आश्रय लेना प्राचीन परंपरा रही है। महाभारत और भागवत पुराण में भी इस तथ्य का उल्लेख है कि गूढ़ विषयों को सरल और रोचक बनाने के लिए आख्यान साहित्य का निर्माण हुआ। इतिहास और पुराणों में वेद के रहस्यों को विकसित किया गया है। क इतिहास पुराणाभ्याम वेद समुपब्रह्मेत, ख भारत व्यपदेशेन याम्नार्यार्थश्च दर्शितः। क मुख्य आख्यान सूक्त 1 विष्णु के 3 पैर त्रिविक्रम, ऋग 1 154, 2 सोम सूर्या विवाह, ऋग 10 85, 3 श्यावाश्व सूक्त, ऋग 5 61, अक्ष सूक्त, ऋग 10 34, 5 मंडूक सूक्त, ऋग 7 103, 6 इंद्रवृत्त युद्ध, ऋग 180 212। ख मुख्य संवाद सूक्त 1 पुरुर्वा उर्वशी संवाद, ऋग 10 95 2 यम यमी संवाद, ऋग 10 10, तीनसरमा पणी संवाद ऋग 10-108-4 विश्वामित्र नदी संवाद ऋग 3-33 5 इंद्र मरुत संवाद ऋग 1-165 6 अगस्त लोपामुद्रा संवाद 1-179 7 वशिष्ठ सुदास संवाद ऋग 7-83 8 इंद्र इंद्राणी वृषाकपि संवाद ऋग 10-86 विशिष्ट आख्यान सूक्तों का विवरण 1 विष्णु के तीन पैर ऋग 1-154 इसमें वर्णन किया गया है कि विष्णु ने अपने तीन पगों से तीनों लोकों को नापा अतः उसे त्रिवृ विक्रम कहते हैं। उसने एक पैर से द्युलोक दूसरे से अंतरिक्ष और तीसरे से भूलोक को नापा। इसका ही विकसित रूप विष्णु के वामनावतार और बलि की कथा में मिलता है। 2 सोम सूर्या विवाह इसका वर्णन पीछे विवाह सूक्त में हुआ है। 3 शावाश्व सूक्त इस सूक्त में ऋषि पुत्र शावाश्व और राजा रथवीति की कन्या का प्रणय वर्णन है। शावाश्व रथवीति की कन्या से प्रेम करता है किंतु रथवीति की पत्नी अपनी कन्या का विवाह किसी सुयोग्य विद्वान से करना चाहती है। शावाश्व कठोर तपस्या करके विद्वान होकर आता है और उसका विवाह रथवीति की कन्या से हो जाता है। इस सूक्त में शिक्षा दी गई है कि योग्य वर को ही कन्या देनी चाहिए। 4 मंडूक सूक्त इसमें वर्षा ऋतु में बोलते हुए मेढकों की वेद पाठी ब्राह्मणों से तुलना की गई है। यह सूक्त एक मनोरंजक प्राकृतिक चित्रण प्रस्तुत करता है। 5 इंद्रवृत्त युद्ध इंद्र और वृत्र के युद्ध का वर्णन वेदों पुराणों महाभारत आदि में सर्वत्र पाया जाता है। वृत्र इंद्र को हराना चाहता है परंतु इंद्र उसका वध करके विजयी होता है। विशिष्ट संवाद सूक्तों का विवरण 1 पुरुर्वा उर्वशी संवाद सूक्त इस सूक्त में राजा पुरुर्वा और उर्वशी नामक अप्सरा के प्रणय संबंध का वर्णन है। उर्वशी पुरुर्वा से विवाह करती है। 4 वर्ष दोनों का प्रणय संबंध रहता है। उनका आयु नामक पुत्र होता है। अंत में प्रतिज्ञा भंग के कारण वह पुरुर्वा को छोड़कर जाना चाहती है। तब पुरुर्वा उसे रोकता है। वह लौटना नहीं चाहती और पुरुर्वा को समझाती है कि तुम मेरे लिए न मरो न शोकाकुल हो, तुम्हें हिंसक पशु न खावे। स्त्रियों का प्रेम चिरस्थायी नहीं होता, वे कठोर हृदय की होती हैं। पुरुरो मा मृथा मा प्रपप्तो मा त्वा विकासो अशिवास उक्षण न वैस्त्रेणानि सख्यानि संति सालावृकाणां हृदयान्येता। इसमें संकेत है कि प्रणय विवाहों की प्राय ऐसी परिणति होती है। पाश्चात्य जगत में इसके असंख्य उदाहरण प्राप्य हैं। शतपथ ब्राह्मण में यह कथा विस्तार से दी गई है। विष्णु पुराण महाभारत आदि में भी इसका उल्लेख है। इसका सुंदरतम रूप कालिदास के विक्रमोर्वशीय नाटक में मिलता है। 2 यम यमी संवाद यम और यमी भाई बहन हैं। यम यमी से सृष्टि के लिए प्रणय याचना करती है। यम इसे अनैतिक और अनुचित बताकर इस प्रार्थना को अस्वीकार कर देता है। पाप माहुर्यः स्वसारं निगच्छात् 3 सरमा पणी संवाद पणि कृपण व्यापारी इंद्र की गायों को चुरा ले जाता है। इंद्र दूत के रूप में सरमा देवशुनी कुतिया को भेजते हैं। सरमा गायों का पता लगा लेती है और पणियों से कहती है कि यदि इन गायों को नहीं लौटाओगे तो इंद्र तुम्हारा सर्वनाश कर देगा। इस सूक्त में सरमा और पणियों का रोचक संवाद है। इस सूक्त में दूत के कर्तव्य और उसकी वाक्पटुता तथा कर्तव्य निष्ठा का सुंदर वर्णन किया गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ पर इंद्र से अभिप्राय जीवात्मा का है। ज्ञान के अनेक रहस्य मस्तिष्क में गूढ़ रूप से विद्यमान रहते हैं और वे अज्ञान के आवरण में छिपे रहते हैं। जीवात्मा उन रहस्यों को जानना चाहता है, तब वह बुद्धि रूप देवशुनी शर्मा को उसका पता लगाने के लिए भेजता है। बुद्धि उन रहस्यात्मक तत्वों या ज्ञान की किरणों को जिन्हें गो कहा गया है पता चला लेती हैं। यहाँ ज्ञान की किरणों को गो कहा गया है। शर्मा कोई कुतिया नहीं अपितु मनुष्य की बुद्धि है जो गुप्त से गुप्त रहस्यात्मक तत्वों का पता लगा लेती है। सूक्त के अंत में कहा गया है कि बृहस्पति ऋषि और ज्ञानी उन गुण तत्वों का पता लगा लेते हैं। बृहस्पति राम अविन अविंदन निगूढ़ा सोमो ग्रामाण ऋषियश विप्रा।